मजलिस और इस इमाम बारगाह की जो बानी है वो शेख खलील है। गुजारिश की गई है कि 5 मरतबा आए मुबारक का विरद करेंगे, सारे मिलकर साथ साथ दोहराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबु अल-मुज़्तर इज़ा दुआहु वयक्शिफु सू أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا الصلوات لائق صدر احترام مومنین عزاداران مظلوم کربلا عشرہ ثانی اور آج کی رات سے تقریباً 10 راتوں تک آپ کی خدمت میں گفتگو اور مجلس عزا کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. مولانا محترم بھی تشریف فرمائیں اجازت سے اور میں بھی آپ کے لیے اجنبی ہوں اور یقیناً آپ بھی میرے لیے اجنبی ہیں. کچھ چہرے مجمع میں آشنا ہیں مگر زیادہ تر ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ جب بات ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے تو یہ اجنبیت انسیت کے اندر بدل جایا کرتی ہے. اور یقیناً بزرگان کی موجودگی میں لب کشائی کرنا اور خود مجلس عزا سے خطاب کرنے والے بزرگان تشریف فرمائے، مولانا صاحب بھی ہیں، جناب فیضان صاحب بھی ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کرنا، پڑھنے والوں کی لغت کے اندر جسارت تصور کیا جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اگر بات ذکر اہل بیت کی ہوگی تو یہاں جسارت کا لفظ نہیں، عبادت کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ محترم، عنوان سخن کا انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت رہے گا، اور اسی لیے رسول گرامی قدر رسول الثقلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا کہ جس میں رسول یہ فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین۔ میں براہ راست گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اس لیے کہ پھر تمہیدی کچھ باتیں ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس آیت کی طرف آ جائیں گے کہ جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام میں سب سے پہلے ذکر کیا تھا۔ تو یہ جو حدیث ہے، حدیث ثقلین، یہ حدیث ثقلین دراصل اس طویل خطبے کا ایک ٹکڑا ہے کہ جسے ہم اور آپ خطبہ غدیر کے نام سے جانتے ہیں۔ خطبہ غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مکان پر اور 18 ذی الحج کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس پورے خطبے کا ایک ایکسپٹ کہیے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کہیے، یہ انی تارکن فیکم الثقلین کا جملہ ہے کہ رسول فرما رہے کہ میں جاتے جاتے اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ دو ستون دے کر جا رہا ہوں، دو اہم چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر ما ان تمسکتم بہما، ما ان عربی سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں، ما ان کے معنی یہ ہے جب تک اس سے جڑے رہو گے، ما ان تمسکتم بہما کے معنی یہ ہے کہ اگر تم نے ان سے جڑائی اختیار کی تو پھر اس کے بعد میں ضمانت نہیں لیتا ہوں کہ تم ہدایت کے راستے پر، نجات کے راستے پر، عافیت کے راستے پر، اطمینان و سکون کے راستے پر رہ پاؤ گے یا نہیں رہ پاؤ۔ لہذا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا، لا تزلوا بعدی ابدا نہیں کہا ہے، کہا ہے لن تزلوا بعدی ابدا، لام نون یہ عربی کے اندر نفی ابدی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے کبھی 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 بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو جس طرح سے حضرت موسیٰ اللہ کا دیدار کبھی نہیں کر پائیں گے براہ راست جو جلوہ الہی، اسی طرح سے اگر کوئی شخص قرآن و اہل بیت سے جڑ جائے گا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لن بھی نفی ادبی کے لیے، ابدی کے لیے آتا ہے، اور بعد میں آخر میں ابدا بھی لکھا ہوا ہے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں ستون، یہ دونوں کمپوننٹس آ کے میرے پاس حوض کوثر کے قریب مجھ سے آ کے مل جائیں گے۔ اب اس حدیث ثقلین سے علماء کرام نے کچھ نتائج نکالے ہیں، کچھ نتائج اخذ کیے حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات اور وہ یہ کہ اگر ان دونوں چیزوں سے زیادہ افضل کوئی شے ہوتی تو رسول اللہ اپنے آخری خطبے میں امت کو جن دو چیزوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اگر ان سے کوئی شے افضل ہوتی تو ان کے حوالے کر کے جاتے۔ لہذا امت کی افضل اشیاء یہ دونوں ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ ثقل اکبر کیا ہے، کون ہے، اس طرف ابھی ہم آتے ہیں، لیکن ایک پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، تمام امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ان کے حوالے کیا، قرآن اور عترت، قرآن اور اہل بیت۔ مجھے یہ بتائیے، جب چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ یبنا رسول اللہ، آپ کے جد رسالت باب دو چیزوں کے حوالے کر گئے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، ثقلین، دو گرا بہا چیزیں، دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں، ان دونوں میں سے زیادہ بڑی شے کون سی ہے؟ کہا نحنو اہل البیت، ہم اہل بیت ہیں جو قرآن اور عترت میں سے زیادہ افضل ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں اگر رکتے ہو تو اس کی تفسیر ہم بتاتے ہیں، محکم کیا ہے ہم بتاتے ہیں، متشابہ کیا ہے ہم بتاتے ہیں، ناسخ کیا ہے ہم بتاتے ہیں، منسوخ کیا ہے ہم بتاتے ہیں۔
نعرہ
हर आयत कुरानी के 70 लेयर्स हैं, 70 बुतून है, 70 बुतून यानी 70 लेयर्स में उसकी गहराई, उसकी डेप्थ है। एक आयत से 70 डायमेंशंस के अंदर हम नताइज अखज कर सकते हैं, हिदायत हासिल कर सकते हैं। एक आयत, ये तो एक आयत की बात है, 6666 आयतें। लेकिन अजीज आदे मोहतरम, ये कुरान करीम जो कुरान सामित है वहां से नहीं, जब तक हम अहले बैत के पास नहीं आएंगे तब तक हमें मालूम नहीं हो सकता कि उन 70 में से आधा भी कौन सा है। और अगर कोई कहता है कि मुझे ये लगता है, तो उसके इस जुमले की कोई अहमियत नहीं है, इल्ला वो ये कहे काल अल बाकिर अलैहि सलाम, इल्ला वो ये कहे काल अल सादिक अलैहि सलाम। पुरानी पूरी पूरी किताबें उलमा इकराम ने इसके एतबार से इस टॉपिक पर लिखी है, तब तावील अल आयत जाहिरा, आयत जाहिरे, आयत जाहिरा, जाहिरी आयत कुरानी की तावील क्या है, तावील तफसीर, ला यालमो तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म, कोई नहीं जानता किसकी तावील, किसकी तावील, कुरान करीम की आयतों की तावील और तफसीर, इल्लल्लाह, या अल्लाह जानता है, या वर्रासिखूना फिल इल्म, या वो जानते हैं जो इल्म में डूबे हुए हैं। अजीजान मोहतरम, अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम जो मिसाल और तमसील और एग्जाम्पल अपनी किसी हदीस में, किसी बयान में, किसी फरमान में बयान कर दी है, तो समझ लीजिए कि वो हिकमत से खाली नहीं है। उनका हर्फ हर्फ आखिर है, रासिखूना फिल इल्म, जो इल्म में डूबे हुए। ये क्यों नहीं कहा कि जिन में इल्म है, ये क्यों नहीं कहा कि जिनके अंदर इल्म है, नहीं, ये नहीं कहा, कहा कि ये इल्म में डूबे हुए हैं। माना क्या, माना ये कि एक ग्लास लीजिए, ये है ना ग्लास इधर, और इस ग्लास के अंदर पानी डाल दीजिए, कितना पानी आएगा, जितना बड़ा ग्लास उतना पानी, कोई तो हद होगी जिस हद के बाद पानी ग्लास से छलकने लगेगा, बाहर गिरने लगेगा। यानी कि अगर ये कहूं कि ग्लास में पानी डाल दो, तो ये लिमिट वाली बात होगी, ये महदूद बात होगी। और अगर मैं कहूं ये ग्लास समंदर के पानी में डाल दो, अगर मैं कहूं पानी ग्लास में है तो लिमिट है, और ये कहूं कि ग्लास पानी में है तो लिमिटलेस बात है, ग्लास के चारों तरफ पानी ही पानी है। नहीं कहा कि इल्म उनके अंदर है, कहा वो इल्म के अंदर है, यानी कि उनके ऊपर भी इल्म है, उनके नीचे भी इल्म है, उनके दाएं भी इल्म है, उनके बाएं भी इल्म है, उनके आगे भी इल्म है, उनके पीछे भी इल्म है, सारी की सारी जहत के अंदर, डायमेंशन के अंदर इल्म ही इल्म है। हर तरफ इल्म ही इल्म, वर रासिखूना फिल इल्म, रासिख है, इल्म में डूबे हुए हैं, इल्म इनके अंदर नहीं है। ये तो छोटी बात है कि इल्म इनके अंदर अगर कहा जाए, ठीक। तो रसूल उम्मत को इनके हवाले कर गए, एक बात, यानी दूसरी बात, तीसरी बात, रसूलुल्लाह, रसूल गिलानी कदर ये बता गए ये हदीस पढ़ने के जरिए से कि हम और आप इनके मोहताज हैं, ये हमारे मोहताज नहीं है। गोया हमने इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो करवाना नहीं है हमें। क्यों? साहिबुल अमर अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे, क्या होगा, सलावतुल्लाह अलैह आलाफ तहियते व सना अला वलीयल अमर फरमाते, वो रिवायत है अब करियुल हिसान के अंदर, कि जब मौला तशरीफ लेकर आएंगे तो ग्रोह पहुंचेगा इमाम के पास, आने के बाद इमाम से कहेगा, इमाम आप तशरीफ रखें, ये सारे उमूर तो हम देख लेंगे, आप तशरीफ रखें, और हमें पता है कि हदीस किसा पहले पढ़नी है या तिलावत पहले करनी है, और ज्यारत में किधर मुड़ना है और कितनी ज्यारत किधर पढ़नी है, ये हमें मालूम है ना, आपको तो पता नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, तशरीफ रखें, आराम कीजिए, हम ये सब उमूर देख लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। गोया इमाम को फॉलो करवाया जा रहा है, इमाम को फॉलो किया नहीं जा रहा। हदीस शक्लैन समझा रही है कि अपने आप की, बच्चों की, उम्मत की, कौम की तरबियत इस चीज पे, इस बुनियाद पे करो कि तुम्हें इमाम अलैहिस्सलाम को फॉलो करना है, अपनी बात उन पर इम्पोज नहीं करनी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा अमर है, इसकी तरफ, इसकी डिटेल में इस वक्त हम नहीं जाएंगे, वरना इसके लिए बहुत सारी, इसके सपोर्ट के अंदर बहुत सारी अहादीसें, रिवायात हैं, वाकयात हैं, खुद जमाने गैबत सुगरा और गैबत कुबरा के अंदर जमाने के इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम जमाना होने का दावा करने वाले अफराद, इसके हवाले से पूरी एक चैप्टर है कि जो कुतुब के अंदर लिखा है। ये बात हो गई, इसके बाद वाला पॉइंट जो हदीस सकलैन से निकाला जाता है, उलमा कराम बयान करते हैं कि ये बयान करती है ये हदीस कि मनसबे इमामत और खिलाफत इलाहिया मुनहसिर है इतरत ताहिरा के अंदर। क्यों, कैसे? ऐसे कि अगर रसूल फरमा गए कुरान और एक अहले बैत, ये इतरत वो है कि जो उम्मत की इमामत की सलाहियत रखती है। अगर और मंसूस मिनल्ला मिन जानिबिल्ला परवरदिगार आलम की जानिब से इन्हें ये मनसब इनायत किया गया, अगर इनको छोड़कर किसी और को इमाम माना जाए तो ये कहना और ये मानना लाजिम आएगा कि जो रसूल बता गए वो मफजूल है और जिसको हमने बनाया वो अफजल है। लिहाजा अब मैं बात को मुख्तसर करूं कि आपकी थकावट का बाइस ना बने, अब आ जाइए बिल्कुल उस पॉइंट की तरफ के जो इस हदीस सकलैन के सिनेरियो के अंदर आखिरी पॉइंट है, और फिर हम बराहराज फजीलत रसूल और उसके बाद फजीलत वलीउल्लाह और फजीलत वसी रसूल की तरफ आ जाएंगे। ये बात बयान करती है यह हदीस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती आहला बैती, कुरान करीम की तफसीर अगर करना चाहो तो दौड़े दौड़े अहले बैत अथार इतरत के दर पे आ जाना, किसी ऐरे गैरे से जाके इसकी तफसीर पूछने मत लगना। इसलिए कि अगर कोई मुझ जैसा भी आके करता है तफसीर अपनी जानिब से तो उसे कयास कहा जाता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो कहा जाता है कि सिर्फ कुरान पढ़ते जो अरबी पढ़ते उसका कोई फायदा नहीं होता, जब तक तर्जुमा न पढ़े तब तक फायदा कुरान करीब का नहीं होता। ये आप तर्जुमा तो पढ़ते ही नहीं है, आप तो सिर्फ अरबी पढ़ते रहते हैं, आपको समझ में क्या आ रहा है, ये कहा जाता है या नहीं कहा जाता? इसके माना ये हुआ कि इसकी अरबी के अल्फाज के कोई आसार नहीं है, ये कोई मौजजा नहीं है कुरान करीम की आयतें और कुरान करीम पूरा का पूरा। यानी अगर तर्जुमा नहीं पढ़ा जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके एतबार से मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, और वो ये, मैं जब यहां से चलता हूं दरिया के किनारे जाकर बैठता हूं सी शोर के ऊपर, वेव्स आती हैं, पानी की लहरें आती हैं, वो किनारे से टकराती हैं, तो क्या खूबसूरत आवाज बुलंद होती है। अगर मैं आबशार वाटरफॉल के करीब जाकर बैठता हूं और पानी के छन छन गिरने की आवाज को मैं सुनता हूं तो वो कितनी खूबसूरत आवाज लगती है, मुझे कितनी अच्छी दिलकश आवाज लगती है, बल्कि सिर्फ अच्छी नहीं लगती, वो मेरी रूह पर असर भी करती है। शाम के वक्त जब मैं बैठा होता हूं किसी दरख्त के नीचे तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज मेरे कानों में जब पड़ती है तो ये आवाज दिल लुभाने वाली होती है, मेरे टेंशन को, डिप्रेशन को, मेरी बुराइयों को, मेरी जहन की खलिशों को दूर कर देती है। तो इन तीनों चीजों में से किस चीज का ट्रांसलेशन हमने समझ के हासिल किया? आज तक किसी ने वाटरफॉल का ट्रांसलेशन किया है? आज तक किसी ने चिड़ियों की चहचहाने की आवाज का ट्रांसलेशन किया है? आज तक किसी ने लहरों के साहिल समंदर से टकराने का ट्रांसलेशन किया है? क्या ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि इनमें से कोई एक चीज भी हमारे समझ आने के बाद हम पे असर करती हो? समझ नहीं आती मगर असर करती है, और है क्या? मखलूक खुदा की आवाज जो ना समझ आके भी असर करे, ये है मखलूक खुदा की आवाज। और वो कुरान करीम की आयत है जो अल्लाह की आवाज है, समझ में आए ना आए क्या असर नहीं करेगी? रूह इंसान पर क्या असर नहीं करेगी? बस अजान मोहतरम, अब हम बराह रास्त उस आयत की तरफ आ जाए कि जो आयत हमने इब्तिदा में तिलावत की, हामीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम अलकिताबिल मुबीन, मगर उससे पहले जरा रुक कर, रसूल ये फरमा गए, रसूल का मकाम, मकामे मोहम्मद अरबी, शान रिसालत, जरा एक लहजा रुक कर पहले शान रिसालत सुनते चले जाइए। हमारे मेंबरों से कम बयान होती है शान रिसालत, यही वजह है कि शान रिसालत बयान नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता शान रिसालत बयान ना होने की वजह से मकामे रिसालत में कमी महसूस की जाने लगी है। जरा शाने शाने रिसाले सुन ले, उससे पहले एक दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, क्या कहता है? वो इस तखलुको मिनती ने कहा अते तेरे भी इजनी, ए ईसा उस वक्त को याद कीजिए जब आपने मट्टी के जरिए से एक परिंदे का पुतला बनाया, बे इजनी मेरे इजन से, फतन फको फीहा फतकुनो तैरन बे इजनी, और फिर आपने फूंक मारी तो वो मट्टी का पुतला परिंदा जिंदा होके असली परिंदा बन गया बे इजनी मेरे इजन से। वह इस तुब्र उल अकमहा वल अबरसा बे इजनी, और ए ईसा उस वक्त को भी याद कीजिए जब आपने हाथ फेरने के जरिए से कोड़ी का मर्ज, बर्स का मर्ज, जो व्हाइट पैचेस का मर्ज होता है, ऐसे मरीज जब हजरत ईसा अलैहि सलाम के पास आते थे, अल्लाह याद दिला रहा है हजरत ईसा अलैहि सलाम को कि ए ईसा याद कीजिए, वह इस तुब्र उल अकमहा वल अबरसा बे इजनी, आप ऐसे लोगों पर हाथ फेर के उनको शिफा देते थे बे इजनी मेरे इजन से। वह इस तुखरिजुल मौता बे इजनी, और जब आप मुर्दों को जिंदा कर देते थे मेरे इजन से। ये किसके लिए कहा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा परवरदिगार आलम ने कि ए ईसा याद कीजिए जब आप मेरे इजन से मट्टी का पुतला बनाते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे, वो जिंदा हो जाता था, परिंदा बन जाता था, उड़ने लगता था, आप ऐसे मरीजों को शिफा देते थे मेरे जिन से, जिंदा करते थे मेरे जिन से। ये कहा इज़नी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, और रिसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नजीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, ए नबी हमने आपको बशारत देने वाला, डराने वाला नबी बनाकर भेजा, बे इज्न ही अपने सारे के सारे इज्न के साथ भेजा, अब आपको बार बार हर मौके पे रुक के हमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, सूरज को पलटा दो तुम्हारी मर्जी है, चांद के दो टुकड़े कर दो तुम्हारी मर्जी है, दरख्त को अपने पास बुला लो तुम्हारी मर्जी है, सितारे को दर पे बुला लो तुम्हारी मर्जी है, संग्रेजे से कलमा पढ़ा लो तुम्हारी मर्जी है, दरख्त को अपने पास बुला लो तुम्हारी मर्जी है, किसी को अपने शानों पे बिठा लो तुम्हारी मर्जी है, जुल्फे पकड़वा के किसी को खिला दो तुम्हारी मर्जी है, शानों पे चढ़ा के बुत तोड़वा दो तुम्हारी मर्जी है, सीने से लगा दो तुम्हारी मर्जी है, महफिल में बुला के बिठा दो तुम्हारी मर्जी है, किसी को महफिल से उठा के बाहर कर दो तुम्हारी मर्जी है, किसी को शबे हिजरत अपने बिस्तर पे सुला दो तुम्हारी मर्जी है। अब तुम्हें बार बार इजाजत तलब करने की जरूरत नहीं, ये रिसालत माँ की शान है, शान रिसालत मकाबिल नबूवत है, ये हुजूरे गिरामी कदर और हुआ है। लेकिन वो जो ना समझने वाले थे कि जिनके दिलों में मर्ज था, जैसे अबू लहब अबू जहल, इन्होंने अच्छा थे अबू कौन, ये अबू जहल बाद में बने, पहले क्या थे? अबुल हिकम, फादर ऑफ इग्नोरेंस बाद में बने, पहले क्या थे? फादर ऑफ विजडम। तो फादर ऑफ विजडम फादर ऑफ इग्नोरेंस कैसे बना? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद मोहम्मद जब तक हुजूर के मुकाबले पर नहीं आया था तब तक अबुल हिकम था, कैसा भी था, कैसा भी था अबुल हिकम था, जब रिसालत बाप के मुकाबले पे आकर खड़ा हो गया तो अबू जहल हो गया। इसलिए कि कहा ये दिखा दो आसमान पे कोई मौजिजा करके दिखा दो मोहम्मद, हम मान लेंगे, इसलिए कि हम जानते दुनिया वाले मदीने मक्का वाले ये सारे तुमको जादूगर कहते, आसमान पे कोई मौजिजा करके दिखा दो हम तुम्हारी नबूवत को मान लेंगे, इसलिए कि आसमान पर जादू नहीं होता जादूगरों का। रसूलुल्लाह ने चांद के दो टुकड़े किए, आप जानते किस हद तक उन्होंने रसूल को तंग किया, कहा इसको पहले हॉरिजॉन्टली दो टुकड़े करें, वर्टिकली पहले दो टुकड़े किए, बीच में से टुकड़ा दो अलग हो गए, फिर हॉरिजॉन्टली दो टुकड़े करके ऊपर नीचे, फिर कहा कि एक को दाएं जाने एक को बाएं जाने, एक को जमीन पे लेकर आए एक को आसमान पे लेकर जाए, फिर इन दोनों को मिला दीजिए, पूरा वाकया तारीख के अंदर किताबों के अंदर मौजूद है, और उसके बाद इन्हें फिर जुड़वा दे। दो तरह के जवाब थे, रसूलुल्लाह को जैसे कहा गया रसूल ने वैसे मौजूदा दिखाया हुक्म खुदा से, लेकिन जवाब देने वालों ने कहा कि हम अभी नहीं मानेंगे, हमारा एक काफिला गया हुआ है तिजारत का सामान लेके सफर पे। जब ये लोग वापस मक्का आएंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि फुला दिन फुला टाइम पे ऐसा ऐसा चांद के साथ हुआ था या नहीं हुआ था। अब भी यही मान रहे कि जादू है, एक जवाब ये था। दूसरा जवाब ये था कि ए मोहम्मद हम समझ गए। क्या समझ गए? कि आप नबी हैं? नहीं, कहा हम समझ गए आप इतने बड़े जादूगर हैं कि आपका जादू आसमानों में भी चलता है। मतलब ये हुआ कि जब नहीं मानना है तो रसूलुल्लाह जो कर ले, फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में मरज है मोहम्मद मुस्तफा। आप फिक्र ना करें अगर ये नहीं मान रहे। रसूलुल्लाह को कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा भला पड़ा है उन आयतों से जिसमें रब्बे जुलजलाल ने रसूलुल्लाह के सीने पे हाथ रखे, यानी क्या कहते हैं तमसीलन। आयत का मिजाज ये है कि परवरदिगार आलम दिलासा दे रहा मोहम्मद मुस्तफा, टेंशन नहीं ले आप फिक्र नहीं करें, ये है ही ऐसे। ये था मकाम मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद अरबी का मकाम। अब जब रिसालत माप की ये बात हो तो उनका वसी कैसा होना चाहिए? कौन? जब हम मौलाए कायनात अलैहि सलाम की फजीलत सुनते हैं ना, तो ये समझे कि मौलाए कायनात अलैहि सलाम को रसूल ने अपनी जान कहा है। मफातीहुल जिनान के अंदर मीलाद नबी के दिन की जियारत रसूलुल्लाह की वारिद नहीं है, अमीरुल मोमिनीन की वारिद है। नजफ अशरफ में जाके आपने मीलाद नबी के दिन ये जियारत पढ़नी है। हम हाथों को जोड़ के पूछेंगे ए छठे इमाम अलैहि सलाम, ए पांचवे इमाम अलैहि सलाम, दिन कौन सा है? रसूल की मीलाद का दिन है। उस दिन जियारत आप किसकी वारिद कर रहे हैं? किसकी ज्यादा तालीम दे रहे हैं? मौलाए कायनात अलैहि सलाम की ज्यादा कौन होना? जब अशरफ जाके समझा रहे हैं कि अगर नजफ अशरफ में अली की जरी के सामने खड़े होके अस्सलाम वालेका या अमीर अल मोमिनीन कहोगे, ये एज गुड एज ऐसे है कि जैसे मदीना मुनव्वरा में गुंबद खिजा के नीचे खड़े होके कहा अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। शबे 27 रजब जब जाकर पढ़िए आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से मोहम्मद अली के एक जान अलैहिस्सलाम होने का तस्किरा शेख अब्बास कुम्मी ने रिवायतों की रोशनी में, हदीस की रोशनी में 27 रजब, शबे 27 रजब के अमाल का जो चैप्टर है मफातीहुल जिनान में उसमें लिखा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हामिम वल किताबुल मुबीन उसूले काफी बाबुल इमाम अल काजिम अलैहिस्सलाम मबाहिस हुज्जत के अंदर एक नसरानी का पूरा कन्वर्सेशन है इमाम अलैहिस्सलाम के साथ आया है। कौन है ये नसरानी आलिम? है नसरानी आलिम वो कि जो उमूमन सातवें इमाम अलैहि सलाम के पास आके सवालात करता रहता था, तो वो इस दिन भी आया। सवालात उसके कई सारे सवालात हैं, इस वाले वाकई के अंदर 7 सवालात लेकर आया था, उनमें से एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। वो सवाल ये था कि ए मोहम्मद के बेटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुरान करीम में जो आयत है हामीम वल किताबिल मुबीन, इसमें किताब मुबीन से क्या मुराद है? कौन है? क्रिश्चियन है, नसरानी है, आया किसके पास है पूछने के लिए? छठे मामले सातवें मामले सलाम के पास। जानता है कि इस दुनिया पे सुरूए जमीन पर अगर कोई वारिस है इल्म अंबिया है तो वो यही है। हमारा सलाम है ऐसे ईसाइयों और ऐसे नसरानियों पर कि जो कुछ भी है कैसे भी है कम से कम हुज्जत खुदा तो हुज्जत खुदा मानते तो है, इनको वारिस इल्मुल अंबिया तो मानते हैं। अच्छा पूछा इसमें क्या मुराद है किताब मुबीन से? इमाम ने फरमाया किताब मुबीन से मुराद इमाम मुबीन है। ठीक, बात खत्म हो गई, शुक्रिया, थैंक यू। तफसीर अय्याशी सूरे अनआम के पोर्शन है, छठे इमाम अलैहि सलाम की रिवायत है, रावी का नाम है हुसैन इब्ने खालिद। उसने आके इमाम अलैहि सलाम से पूछा कि मौला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्ला हु व यालमु मा फिल बर्र वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा व ला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज व ला रब्बिन व ला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। मौला किताब मुबीन से मुराद क्या है? किताब मुबीन से मुराद क्या है? इमाम ने फरमाया इमाम मुबीन। ठीक, बात हो गई। यहाँ पे इमाम मुबीन, अब दो हमारे पास आ गए, एक हामिम वाल किताब मुबीन, वहां पे भी किताब मुबीन से मुराद इमाम मुबीन। वह इन दम मफातिह गैब ला यालमुहा, ये मोमिनीन से ढकी छुपी आयत नहीं है जो नमाज गुफैला में पढ़े कर पढ़ा करते हैं। उसके आखिर में क्या है, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है जो इल्ला ये कि किसमें है, किताब मुबीन में है। पूछा किताब मुबीन क्या है, इमाम ने फरमाया किताब मुबीन इज इक्वल्स टू इमाम मुबीन, बात खत्म हो गई। तफसीर बहुत ज्यादा तफसील नहीं मिली फिर हमें, लेकिन ये बात है जो हमने रसूलुल्लाह का बयान किया और अब जो रसूल के वसी का बयान कर रहे हैं, एक बात कॉमन है और वो बात ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो है जो कुछ कुछ इख्तियारात रखते हैं परवरदिगार आलम की जानिब से, रसूल वो है जो सब कुछ इख्तियारात रखते हैं। कुछ है परवरदिगार आलम के हिदायत करने वालों में जिनके पास कुछ कुछ है, और कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। तो एक ग्रोह हो गया कुछ कुछ वालों का और एक ग्रोह हो गया सब कुछ वालों का। हजरत ईसा अलैहि सलाम सब कुछ कर रहे हैं, यानी जो कोई भी काम कर रहे हैं, बे इज़नी, हर आयत के अंदर कहने का मकसद यह था कि तुमने जब तक हमारा इज़्ज़त न तलब किया तुमने पुतला नहीं बनाया, जब तक आपने हमारी इजाजत न ले ली तब तक आपने फूंक नहीं मारी, जब तक आपने इजाजत नहीं ले ली एक भी मरीज को आपने शिफा देने के लिए हाथ नहीं फेरा, हर जगह पे इज़्ज़त के मुंतजर है हजरत ईसा, तो कुछ कुछ वाले हुए। और रसूल पहले से सारा इज़्ज़त दे रखा है हमने, ए मोहम्मद हमने आपको पूरा इज़्ज़त दे दिया, सब कुछ इज़्ज़त दे दिया, अब आप जो करें हमें आप पर पूरा भरोसा है, हम जानते हैं आप हमारे मिजाज को जानते हैं, हमारे मिजाज और हमारी मर्जी से हटके कुछ नहीं करेंगे। अब यहां पे सब कुछ वालों की मिसाल, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ वालों की एक मिसाल और सुन लीजिए। जनाब सुलेमान कहते हैं या अय्युहन्नास कुल लिमना मंतकुल तैर, ए इंसानों परवरदिगार आलम ने मुझे तुयूर की परिंदों की जबान सिखाई है, वह उतीना मिन कुल्ले शय, और परवरदिगार आलम ने सब कुछ में से कुल शय में से कुछ कुछ अता किया है, मिन मिने तबईजिया यहां पर लगा हुआ है, मिन कुल्ले शय का है, कुल्लो शय नहीं का है। तो जनाबे सुलेमान ये कह रहे हैं कि ए इंसानों उल्लिमना मंतिकुत तैर, मुझे और सिर्फ मंतिकुत तैर नहीं, सिर्फ परिंदों की जबान नहीं, दुनिया के हर मखलूक की जबान, चरिंद परिंद जमादात हैवानात इंसान हर एक की जबान परवरदिगार आलम ने जनाबे सुलेमान को सिखा रखी थी, इसलिए कि पूरी दुनिया पे हुकूमत हजरत सुलेमान को रब्बे जुलजलाल ने इनायत की थी। उल्लिमना मंतिकुत तैर वह उतीना मिन कुल्ले शय कहा है, कुल्लो शय नहीं कहा, उतीना मिन कुल्ले शय और कुल शय में से कुछ कुछ मुझे दिया, तो सुलेमान भी कुछ कुछ वाले हो गए। लेकिन इमाम मुबीन है कौन और क्या चीज है, ये सवाल तो अपनी जगह पर खड़ा रहा। इतना तय है ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, ये किताब मुबीन जो कि इमाम मुबीन है, हो ना हो ये कुछ कुछ वाला नहीं होगा, ये सब कुछ वाला होगा। अब ये कब राज खुला, ये राज उस दिन खुला जब मस्जिद नबवी में रसूल बैठे हुए थे, सवाल करने वाला बुजुर्ग आया और उस बुजुर्ग ने आके रसूल से सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये इमाम मुबीन क्या चीज है, नहीं पूछ रहा कि कौन है, पूछ रहा है क्या चीज है। रसूल ने एक मरतबा पूछने वाले ने आकर पूछा क्या इमाम मुबीन तौरात है, रसूल ने फरमाया नहीं, और रसूल दोबारा अपना काम करने लग गए, मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद फिर आया, क्या रसूल अल्लाह इमाम मुबीन से मुराद जबूर है, रसूल ने कहा नहीं, और रसूल फिर इग्नोर करके अपना काम दोबारा करने शुरू हो गए। फिर पूछा इंजील है, रसूल ने फरमाया नहीं, फिर दोबारा आया पूछा क्या कुरान है इमाम मुबीन से मुराद, रसूल ने फरमाया नहीं। कुछ देर गुजरी, सब आइडल हो गए, अपने अपना काम करने लग गए। इतने में कोई मस्जिद नबवी के दरवाजे से दाखिल हुआ, रसूलुल्लाह के पास आके अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, रसूल ने सवाल करने वाले को खुद अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि भाई तू अभी थोड़ी देर कबल कुछ सवाल कर रहा था, जरा अपना सवाल दोहरा तो देना। सवाल दोहराया गया और पूछा या रसूल अल्लाह इमाम मुबीन से मुराद कौन है। वो शख्स सवाल करने वाला उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी मस्जिद नबवी के, रसूल ने फरमाया जाके मुड़ के देख ले, जो इस वक्त मस्जिद नबवी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ है यही वो है कि जिसे कुरान में इमाम मुबीन कहा गया है, सूरह यासीन में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व कुल्ला शय इमाम मुबीन, कुल शय सब कुछ को हमने रख दिया फी इमाम मुबीन, पलटने वाला पलटा, दरवाजे
दरवाजे की तरफ देखा, सारे के सारे अरमान पानी में मिल गए जब देखा कि कोई और नहीं था जुस अली जिब्रे अभी तालिब अलैहि सलाम के।
वह ऊती नाम इनकुल शय, और ये है वह कुल्ल शयन आहसा ना हो फी इमाम मुबीन, हर शय का ऐसा हमने इमाम मुबीन में कर दिया है। ठीक है, अब आ जाइए इसकी तफसीर मजीद, इसकी थोड़ी सी तफसील, दो जुमलों की जहमत है, उसके बाद फिर हम मसाइब की तरफ आ जाएंगे। वादी नमल से गुजर रहे मौलाए कायनात अपने सहाबी जलील उल कद्र जनाब अम्मार इब्ने यासिर के साथ। अब जनाब अम्मार ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, या अबुल हसन, ये है वादी नमल। नमल किसे कहते हैं? एंट्स को। कुरान करीम में एक पूरा सूरा है नमल के नाम से, चूंटी वाला सूरा अन्नमल। पूछा कि या अमीर अल मोमिनीन, क्या कोई ऐसा होगा इस दुनिया में कि जो जानता हो कि इस वादी के अंदर चूंटियों की तादाद कितनी है? मौला ने फरमाया कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ऐसा भी है कि जो तादाद के साथ साथ ये भी जानता है कि नर कितने हैं और मादा कितने हैं। कहा, या अबुल हसन, या अमीरुल मोमिनीन, कौन है ऐसा? मेरा तजस्सुस बढ़ गया। फरमाया, क्या तूने कुरान करीम की वो आयत नहीं पढ़ी सूरह यासीन में अल्लाह जिक्र करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वह कुल्ला शयइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हर शय का बयान हमने इमाम मुबीन में रख दिया है। कहा, या अमीर अल मोमिनीन, इमाम मुबीन कौन है? फरमाया, वो इमाम मुबीन है। कायनात अलैहिस्सलाम से पूछा शाहजहां ने, आप अफजल हैं आदम? फरमाया, अपनी तारीफ खुद करना अच्छा नहीं है, लेकिन जब बात फजले इलाही की हो तो अम्मा बिने मते रब्बी का फहदिस, अगर तुझे अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो हदिस बता लोगों को कि यह नेमत मुझे अल्लाह ने दी है। अब अगर कोई अली की किसी फजीलत पे इनकार कर रहा है तो वह अली की फजीलत पे इनकार नहीं, अल्लाह के फजल पर इनकार कर। वकुल्ला शयइन अहसैना हु फी इमाम मुबीन, और कुछ कुछ वाला और सब कुछ वाला, ये तो समझाने के लिए है, वरना कुरान करीम कुछ कुछ वाला सब कुछ वाला थोड़ी कहेगा, ये तो बात को तकरीब जहन के लिए, इंतकाल मतलब के लिए ये इबारत इस्तेमाल की जा रही है। जनाब कंबर, आप लोगों का बारहा का सुना हुआ वाकया, लेकिन जब सुनते हैं भाई, रोजाना वही सूरज तो निकलता है, किसी दिन नया सूरज निकला है क्या? सूरज रोज एक ही सूरज निकलता है, किसी में जुर्रत नहीं होती है कहता हुआ नजर आए कि है सूरज तू तो वही है जो कल था फिर आ गया आज। लेकिन हर दिन जब सूरज वही सूरज निकलता है, एक नई रोशनी लेकर आता है। अली की फजीलत वही है जो 1400 सालों से बयान हो रही है, लेकिन जब बयान की जाती है ईमान की एक नई रोशनी बिखेर देती है। कंबर, इसे रोटी दे दे, साहिल आए, एक रोटी का सवाल है, एक रोटी मांगी है। कंबर इसे रोटी दे दे, कहा बोरी में, बोरी दे दे, कहा बोरी ऊंट पर है, ऊंट दे दे, कहा ऊंट कतार में, कहा कतार दे दे, कंबर कतार दे दे। ये सुनना था एक मर्तबा ऊंटों की जो कतार थी उसकी मिहार जो रस्सी थी पीछे हट गया कंबर। मौला कायनात पूछ रहे, कंबर क्या हुआ? कहा मौला मुझे खौफ हुआ अगर और ताखीर की तो मुझे अपनी गुलामी से उसकी गुलामी में ना दे दे। मौला सब बर्दाश्त है, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं है, सब बर्दाश्त है, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं है। और दूसरा, मौला ने यह भी समझा दिया, अगर कोई तेरे सामने आके हाथ फैला चुका है ना, तेरे पास कम नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा दे दे, लेकिन उसका शर्मिंदा चेहरा ज्यादा देर तक ना देख। तेरे जेब में अगर 10 का नोट नहीं है, 20 का नोट है, दे दे, तुझे खुदा उससे ज्यादा दे देगा, लेकिन शर्मिंदा चेहरा ज्यादा देर तक ना दे। एक मर्तबा मौला ये समझा रहे हैं, मिजाज इमामत ये समझा रहा है, मांगी थी एक रोटी, क्या मिला? पूरी ऊंटों की कतार मिल गई। हम और आप कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि हमारी सारी जिंदगी की इबादतें ऐसी हैं कि भाई सुभान अल्लाह, मैं तो अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और जाकर कहूंगा या रब ज़ुल जलाल, मेरी ये सारी नमाजें हैं और मैंने नमाज पढ़ी है, और आप देखें कि किस खुशू खुशू के साथ पढ़ी है मैंने, इसको कबूल करें और मुझे जन्नत दें, ये नमाजें हैं जो मुझे ले जाएंगी जन्नत। कोई फखर के साथ कह सकता है? कोई बिल्कुल यकीन के साथ कहे कि भाई बिल्कुल हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी और मेरी सारी नमाजें कबूल हो जाएंगी? अगर कोई समझता है तो अपनी सोच को ठीक कर ले, इसलिए कि जब उसकी बारगाह में उस मीजान पे हमारा अमल तुलने के लिए जाएगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ हम उसका फजल काम आएगा, हमारा अमल काम नहीं आएगा। उसका फजल काम आएगा, उसका अदल अगर हुआ तो हमें से कोई नहीं बच सकता। तो मौला ने मिजाज इमामत समझा दिया, चलो कोई एक रोजा कबूल हो गया होगा, कोई एक नमाज, यानी लीस्ट एंड वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के अंदर अगर ले लें और वो हम ले जाए मौला कायनात के पास, या अमीर अल मोमिनीन ए कसीमुल जन्नत वन नार, ए जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले, ये मैं लेकर आया हूं, जो कुछ थोड़ा बहुत कर पाया, सारा तो नहीं, मुझे तो मालूम है कि यकीनन इसमें कमी कजी कास्ती होगी, तो बस ये ले लीजिए और एक जन्नत के बागों में से किसी एक बाग के एक दरख्त का एक पत्ता दे दीजिए। अली इब्ने अबी तालिब कंबर से कहेंगे पत्ता दे दे, कंबर कहेगा मौला पत्ता दरख्त में है, मौला कहेंगे दरख्त दे दे, फरमाएंगे दरख्त बाग में, कहेंगे बाग दे दे, कंबर कहेगा कि मौला बाग जन्नत में है, कहेंगे जन्नत दे दे इसको। इसे कहते हैं अकीदा शिफात। मंजल लजी अशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, कौन है कि जो अल्लाह के नजदीक शिफात करे? इल्ला बिइज़्निहि, उसके इज़्न से। और अगर उसका इज़्न है तो हम और आप होते नहीं है कोई कहने वाले कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आंसू के बदले जन्नत मिल जाए, नहीं कह सकते। इसलिए कि ये उसकी मर्जी है कि जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे नहीं दे। और इस पर इंशाल्लाह हम आगे आने वाले दिनों में एक मजलिस के अंदर इसको तफसील के साथ आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि ये फलसफा है क्या कि एक आंसू के बदले जन्नत जो दी जा रही है, तो इसके अंदर कमाल किसका है, हमारे आंसू का है या किसी और का कमाल कार फरमाए कि जो एक आंसू को भी इतना बड़ा बना देता है। अजान मोहतरम, आज की हद तक हमने बात को इस मौके पे, इस मकाम पे रोका। ऐसे फजाइल, ऐसे कमालात वाले अहले बैत कभी अली अकबर जैसे करियर जवान नहीं, शबीह पैगंबर के सीने में बर्छी मार के सुकून नहीं आया। लईन कहता है अब देखो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि हुसैन दौड़ता दौड़ता अपने जवान के सराहने आएगा, करीब आया और अली अकबर के सीनों में लगी हुई बर्छी की अली को तोड़ के चला गया। तो अब्बास से अलमदार के दो बाजुओं को कलम कर दिया गया, हत्ता के हुसैन के 6 महीने के अली असगर तक को नहीं छोड़ा। उस तीर के जरिए से जिबा किया कि जो तीर ऐसा था कि जिसका वजन अली असगर के वजन से भी कई गुना ज्यादा ज्यादा था। हाँ अजीजान मोहतरम, अय्याम ये रातें वो रातें हैं कि जिन रातों में मौला सैयद सज्जाद बएजाज इमामत करबला आके दफन करते हैं शहदाए करबला को। कहीं पे 13 मुहर्रम का मिलता है और रिवायतों में इख्तिलाफ है, लेकिन 13 मुहर्रम वो दिन कि जब मौला इमाम सज्जाद बाइजाज इमामत कूफा से तशरीफ लाए करबला और आने के बाद दफन किया शोहदा को। बनु असद के कबीले वाले करबला के बन में बिखरे लाशों को देख रहे थे, मौला की वसीयत पे अमल करना चाहते थे, दफनाना चाहते थे, मगर समझ नहीं आ रहा था कि सर किसका है और धड़ किसका, बदन किसका है, सर किसका है, कोई पामाल लाशा, किसी के बदन पर इतने तीर है पहचानने में नहीं आ रहा। इतने में बनु असद के कबीले वालों ने किसी एक सवारी को आते देखा, दिल घबरा गया कि कहीं इन अशकिया के लश्करों का कोई सिपाही आके हमारा ताकुब ना करे। जब दूर से आने वाले को देखा, महसूस किया, एक मरतबा सदा दी है सवार ने, कहते हैं तुम फिक्र ना करो, मैं ही हूं जो इन सारे लाशों का वारिस हूं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए। मौला सैयद सज्जाद हाथों में बेल, हाथों में हथकड़िया है, पांव में बेड़िया है, गले में खारदार तौक है। मौला सज्जाद
आके ये कहते हैं देखो ये दो छोटे छोटे लाशे आना मोहम्मद के। अरे ये देखो एक गठड़ी है जिसमें पामा लाश के टुकड़े हैं, ये काश में गुलबदन का लाश। अरे ये देखो एक जवान का सीना जख्मी है, अरे ये टूटी हुई बरछी का निशान कलेजा सीने में नहीं है। अरे ये दो कट्टे बाजू मेरे चचा पास के हैं, अरे एक मर्तबा बनो सबके कबीले वाले एक एक लाशे को दफनाने के बाद जब पलटने लगे माला सैयद सज्जाद ने कहा अभी रुको अभी जाने की जल्दी ना करो इसलिए कि अभी एक लाशा दफनाना बाकी है। चलो मेरे साथ फुरात के किनारे चलो। अरे मेरे बाबा के लश्कर का आलम बरदार अब्बास का लाशा, अरे हमारा चचा फुरात के किनारे सो रहा। चले गए कब्र खुदी एक मर्तबा मारा सज्जा
कब्र अब्बास कब्र के अंदर मौला सज्जादे और काफी देर तक सीना अबुल फजल अब्बास पे अपना सर रखे कुछ बातें करते जाते रोते जाते। सुनने वाले रावी ने एक जुमला जरूर सुना कहा कि ए मौला ए चचा जान आप क्या चले गए नबी और अली शादियों के सरों से रेताओं को नहीं इन्होंने छीन लिया। सुनने वालों ने सुना सैयद सज्जाद अरे सिसकियों हिचकियों के साथ रोते हैं महसूस हुआ। अरे अगर कुछ और देर रोने दिया गया तो रूहे सज्जाद परवास कर देगी। कहा जाओ जाओ मौला सैयद सज्जाद को कोई कब्र से बाहर ले आओ। मगर अजीजो कब्र तो बनी मगर कब्र कितनी छोटी थी। जब सैयद मेहदी दारुल उलूम में जब अशरफ से बुलाए गए सैयद तशरीफ लाइए कब्र अब्बास अलैहिस्सलाम के गर्द पानी आ रहा है मरम्मत के काम की जरूरत है मगर आपकी रहनुमाई के बिना नहीं हो पाएगा। मैं जब अशरफ से सैयद मेहदी दारुल उलूम आए एक मरतबा वो मेमार वो मजदूर अंदर जाता है मौला अब्बास की कब्र मुतहर कच्ची कब्र सरदा मौला हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। एक मरतबा मरम्मत करने के बाहर आके सर एक मरतबा सैयद के सर सैयद के कांधे पे रख के बहुत रोता है रोता जाता है कहता जाता है एक सवाल का जवाब चाहता हूं मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल है का इतनी छोटी कब्र तो किसी 6 महीने के बच्चे की भी नहीं। अरे हमने हमेशा सुना कि जब भी अब्बास जीने फर्श पे बैठते थे अगर पांव रिकाबों में न डाले तो जमीन पर खत करते थे तब मेरे मौला के। तो भाई इतनी छोटी कब्र कैसे। अब्बास की मुसीबत का हवाला सुना सैयद मेहदी बैरुल उलूम रोने लगे ऐसा गिरिया के रीस तर हो गई दाढ़ी गीली हो गई आंसुओं से। जब गिरिया कहा मरतबा अब्बास जब फुरात से वापसी आ रहे थे दोनों बाजू कलम हुए मशके सकीना छिदी भागी हुई फौजे वापस आई अब्बास को किसी ने तीर मारा किसी ने खंजर से वार किया किसी ने तबर मारा किसी ने गुर्ज मारा। अरे इतने जख्म लग चुके थे सैयद सज्जाद दफन करने के लिए अगर पांव की जानिब से उठाते थे वो हिस्सा जिस्म से अलग हो जाता था अगर सीने की तरफ से उठाते थे वो हिस्सा अलग हो जाता था सर की जानिब से उठाते थे वो हिस्सा अलग हो जाता था। इतने जख्म लगे हुए थे अब्बास का लाशा नहीं लाश के टुकड़े। الا ولعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد اي منقلب ينقلب خبردگار ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما کہ ناسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما اس پرسے کو امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ایصال و ارسال فرما. جتنے مومنین فرش عزا پر تشریف لائے ہیں سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو دور فرما. جتنے مریض الاحوال ہیں سب کو شفاء کلی عنایت فرما. صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.